देखिए भाई आगे सबक। काला वला यन आकिदु निकाहुल मुस्लिमीन इल्ला बिहुजूरी शाहिदैनी हुर्रैनी आकिलैनी बालिगैनी मुस्लिमैनी रजुलैनी औ रजुलिन व मरअतैन उदूलन कानू औ गैर उदूलिन औ महदूदीन फिल कज़्फ़। قال رضي الله تعالى عنه اعلم ان الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه السلام لا نكاح الا بشهود وهو حجة على مالك رحمه الله تعالى في اشتراط الاعلان دون الشهادة। भाई गुज़श्ता सबक में साहिब कुदूरी ने वो अल्फाज जिक्र फरमाए थे कि जिनके जरिए निकाह मुनाकिद हो जाता है, और उन्होंने आपको बतलाया कि निकाह तजवीज, हिबा, तमलीक, सदका और ब्याह के अल्फाज से निकाह मुनाकिद हो जाता है, और इजारा, इआरा, इहलाल और इबाहत और वसीयत वगैरह अल्फाज के साथ अक़्द निकाह मुनाकिद नहीं होगा। और एक ज़ाब्ता भी मैंने आपको बतलाया था कि फुकहा फरमाते हैं कि जो लफ्ज भी तमलीक ऐन फिलहाल का फायदा दे उसके जरिए अक़्द निकाह मुनाकिद हो जाएगा, यानी तमलीक का फायदा दे कि उसमें दूसरे को मालिक बनाया जाए, और तमलीक भी ऐन की हो यानी जात का मालिक बनाया जाए, सिर्फ मुनाफिया का मालिक न बनाया जाए, और नीज ये मालिक बनाना भी फिलहाल हो यानी उसी जमाने के अंदर हो, तो जो लफ्ज भी ये तीन फायदे देगा उनके जरिए अक़्दे निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और हिबा, तमलीक और सदका और इसी तरह बैअ, ये सब भी तमलीक का भी फायदा देते हैं, और तमलीक भी जात की होती है और उसी वक्त इस तमलीक का फायदा देते हैं उसी जमाने में, लिहाजा इनके जरिए निकाह मुनाकिद हो जाएगा। जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ तजवीज और निकाह के लफ्ज से निकाह मुनाकिद होगा, वजह यह कि ये लफ्ज सरीह है निकाह के बाब में, इनका और कोई माना ही नहीं है। इनका माना निकाह करना या निकाह करवाना, शादी करना या शादी करवाना, तो इनका माना ही निकाह और शादी के है, इसलिए इनसे तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, लेकिन बाकी लफ्जों के साथ निकाह मुनाकिद नहीं होगा। और फिर उनकी दलील जिक्र की थी साहिबे हिदाया ने कि इमाम शाफिई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि लफ्ज के इस्तेमाल के दो ही तरीके हैं, या उसको अपने हकीकी माना में इस्तेमाल किया जाएगा या मजाजी माना में, और ये लफ्ज जो तमलीक पर दलालत कर रहे हैं यानी हिबा, तमलीक, सदका और बैअ वगैरह, ये तमलीक पर दलालत कर रहे हैं, और तमलीक जो है ना तो इसका हकीकी माना जो है वो निकाह और तजवीज के है, और इसका मजाजी माना भी निकाह और तजवीज के नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हकीकी और मजाजी माना में कोई ना कोई मुनासबत होती है, जबकि यहां तमलीक और निकाह और तजवीज के माना में कोई मुनासबत नहीं है, क्योंकि तजवीज जो है वो तलफीक के लिए होती है। मैंने बताया लफ्फ़ युलफ्फ़िक तलफीक का माना है दो कपड़ों को मिलाकर, यानी दो तहें बनाकर कपड़ों को मिलाकर सी देना। तो अब दो तहें बन गई, देखो इस दो तहें बनने में दोनों कपड़ों का फायदा हुआ, हर एक कपड़ा दूसरे कपड़े की वजह से मजबूत हो गया। इसी तरह निकाह के अंदर भी जो है तलफीक होती है, यानी मियां बीवी दोनों को मसलहतें हासिल होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खावंद की मसलहतें हों या सिर्फ बीवी की मसलहतें हों, बल्कि इसमें दोनों की मसलहतें हैं। इसी तरह निकाह का माना है जम्मुन यानी मिलाना, और इस मिलाने के अंदर भी कि जब एक मर्द और एक औरत का निकाह करवा दिया तो इनमें जोड़ आ गया, और अब ये मियां बीवी कहलाते हैं, और ये जो जोड़ है और ये जो मिलाना है इसमें भी दोनों का फायदा है, खावंद और बीवी दोनों का, दोनों को औलाद भी हासिल होगी, दोनों का घर बस जाएगा, दोनों की जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, तो इसमें देखो दोनों के फायदे हैं। जबकि तमलीक जिसमें किसी को दूसरी चीज का मालिक बनाया जाता है, और ये तमलीक के अंदर सिर्फ मालिक का नफा होता है, इसमें सिर्फ मालिक के नफे को देखा जाता है, इसमें ममलूक के नफे को नहीं देखा जाता। तो मालूम हुआ निकाह और तजवीज इसमें दोनों का फायदा है, और तमलीक के अंदर सिर्फ एक का फायदा है। तमलीक के अंदर सिर्फ एक का फायदा है। इसी को साहिबे हिदाय ने यूं बयान फरमाया कि निकाह और तजवीज में जोड़ है, मिलाना है, और दोनों मियां बीवी में मुनासबत आ गई कि दोनों को फायदे हासिल हो गए। लेकिन तमलीक के अंदर मालिक और ममलूक के दरमियान कोई मुनासबत नहीं। मालिक जो होता है वो साहिब तसर्रुफ होता है, वो खुद अपना निकाह भी कर सकता है, वो कारोबार तिजारत वगैरह भी कर सकता है, तो उसे हर तरह के तसर्रुफात का हक हासिल होता है। लेकिन जो उसका ममलूक है यानी गुलाम या बांदी, उसको किसी किस्म के तसर्रुफ का हक हासिल नहीं होता। तो तमलीक में नफा सिर्फ किसका है? मालिक का है। तो तमलीक के अंदर मालिक और ममलूक के दरमियान कोई जोड़ नहीं आया, कोई मुनासबत नहीं आई, लेकिन निकाह के अंदर मियां बीवी दोनों में क्या आ गई? मुनासबत आ गई, जोड़ आ गया। तो दोनों एक दूसरे के मुनाफी हैं। तमलीक में एक का फायदा है, एक की मसलहत है यानी मालिक की, और निकाह और तजवीज के अंदर दोनों का फायदा है, दोनों की मसलहतें हैं मियां और बीवी की। तो तमलीक और निकाह और तजवीज में मुनाफात है, मुनाफात है यानी दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं, इन दोनों में तजाद है आपस के अंदर। किसके अंदर? तमलीक, और दूसरी तरफ क्या है? निकाह और तजवीज, इन दोनों में क्या है? तजाद है, तकाबुल है, ये दोनों एक दूसरे के मुतआरिस हैं। जैसे सुबह और शाम, सुबह और शाम एक दूसरे के मुतआरिस हैं, एक दूसरे के मुकाबिल हैं। सुबह और वक्त है, शाम का और वक्त है, तो जब दो चीजें आपस में, जब दो चीजों में तआरुज हो, वो एक दूसरे के मुकाबिल हो, तो वहां पर एक लफ्ज बोलकर दूसरे का इरादा नहीं किया जा सकता। सुबह का लफ्ज बोलें और आप शाम के वक्त का इरादा कर लें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह और शाम में क्या है? तआरुज है। या शाम का लफ्ज बोलें और आप सुबह के माना का इरादा कर लें, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हकीकी और मजाजी माना में क्या होना चाहिए? कोई मुनासबत होनी चाहिए, उनमें तआरुज और तजाद नहीं होना चाहिए। या इसी तरह है सर्दी और गर्मी, देखो सर्दी और गर्मी एक दूसरे के मुकाबिल हैं, इनमें तजाद है, ये मुतनाफियन है, जो उस वक्त सर्दी का है वो गर्मी का नहीं, और जो गर्मी का है वो सर्दी का नहीं है। एक वक्त में एक चीज हो सकती है, या सर्दी होगी या गर्मी होगी, तो दोनों क्या है? आपस में मुतनाफियन है, इकट्ठे नहीं हो सकते। लिहाजा आप सर्दी का लफ्ज बोलें और इरादा किस माना का करें? गर्मी का, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों आपस में मुतनाफियन है, दोनों में आपस में क्या है? तआरुज है। यहां पर भी इसी तरह है, एक है तमलीक एक तरफ और दूसरी तरफ है निकाह और तजवीज। तमलीक में एक का फायदा और निकाह और तजवीज में दोनों के फायदे, तो ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। एक वक्त में एक चीज हो सकती है, या तो दोनों का नफा होगा या दोनों का नफा नहीं होगा। भाई दोनों का नफा है किसमें? निकाह और तजवीज में, और दोनों का नफा नहीं है किसके अंदर? तमलीक के अंदर। तो देखो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हो गए, लिहाजा तमलीक बोलकर निकाह और तजवीज का इरादा नहीं किया जा सकता। बात भी समझ में आई या नहीं? तमलीक में एक की मसलहत या दोनों की? एक की। और निकाह और तजवीज में दोनों की मसलहतें, तो ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। एक वक्त में एक चीज हो सकती है, या दोनों की मसलहतें होंगी या सिर्फ एक की मसलहत है। ऐसा नहीं हो सकता एक ही वक्त में आप यूं भी कहें सिर्फ एक की मसलहत है और फिर आप ये भी कहें दोनों की मसलहत है। नहीं भाई, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती भाई। या सिर्फ एक का नफा होगा या दोनों का नफा होगा। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा मालूम हुआ तमलीक की कोई मुनासबत नहीं है निकाह और तजवीज के साथ, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं, और अहदुल मुताकाबिलैन में से एक को दूसरे माना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा तमलीक बोलें या हिबा बोलें या सदका बोलें या बै बोलें और क्या मुराद ले लें, निकाह और तजवीज नहीं हो सकता। ये सही नहीं, क्योंकि आपस में क्या है? मुतनाफियन है, एक दूसरे के मुकाबिल हैं। भाई बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने अहनाफ की दलील जिक्र फरमाई। हम कहते हैं कि ये तमलीक जो है ये सबब है मिलके मुता का, तमलीक जो है मिलके मुता तक पहुंचा देती है, क्योंकि जब किसी शख्स को किसी चीज का मालिक बनाया जाए, चाहे हिबा के जरिए हो, चाहे तमलीक के लफ्ज से हो, चाहे सदका के लफ्ज से हो, चाहे बै के लफ्ज से हो, तो जब उसको मिलके रकबा हासिल होगी तो उसको मिलके मुता भी हासिल हो जाएगी अपने महल में, यानी अगर वो मुता का महल है, मुता का महल है तो उस शख्स को मिलके मुता भी हासिल हो जाएगी। पहले तो यह समझ लें, मुता का वैसे माना है फायदा, लेकिन यहां हर फायदे की बात नहीं हो रही, वरना तो हर चीज का कोई ना कोई फायदा है। आप गाड़ी भी खरीदते हैं, उसका कोई ना कोई फायदा है कि आप उसमें सफर करते हैं, और भी कोई चीज खरीदते हैं तो किसी फायदे की वजह से लेते हैं, लेकिन यहां मुताए मखसूस यानी सोहबत की बात हो रही है, तो सोहबत जायज हो जाएगी जब क्या आ जाए, मिलकर रकबी आ जाए, तो क्या जायज हो जाएगी, सोहबत यानी मिलकर मुताह हासिल होगी, लेकिन हर जगह नहीं, उस जगह में जो महल भी हो मुताए का, जो महल भी हो मुताए का, वहां पर मिलकर मुताह हासिल हो जाएगी। मसलन अगर कोई शख्स हैवान खरीदता है तो यह महल मुताह नहीं है, कोई शख्स गुलाम खरीदता है तो यह महल मुताह नहीं है, हां कोई बांदी खरीदता है तो यह है महल मुताह भाई, और यह कोई मानिया मौजूद नहीं, तो यहां मिलकर रकबी के साथ क्या आ जाएगा, मिलकर मुताह भी आ जाएगा इस शख्स के लिए, इस मालिक के लिए अपनी बांदी से सोहबत जायज हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तो इंदल अहनाफ तमलीक पहुंचाती है मिलके रकबी तक, और मिलके रकबी कहां तक पहुंचाती है, मिलके मुता तक, तो तमलीक सबब हुई मिलके मुता के लिए, और निकाह में भी क्या हासिल होता है, मिलके मुता ही तो हासिल होता है निकाह में, और तो कोई चीज नहीं। देखो बीवी जो है वो किसी की ममलूक नहीं हो जाती, वो आजाद औरत है, हां खावंद को मिलके मुता हासिल हो गया, बात समझ में आ गई, तो वो आजाद औरत है, कुछ उस पर पाबंदियां जरूर आ जाएंगी, लेकिन बहरहाल वो है आजाद औरत, तो लिहाजा मिलके मुता उसको खामंद को हासिल हो जाएगी, तो तमलीक जो है वो सबब हुई मिलके मुता की, और सबब बोलकर मुसबब का इरादा किया जा सकता है अरबी जुबान में शाय और राय जो है, मसलन अरबी जुबान में कहते हैं आजुमत यदु फुलानिन, फुलां की सखावत बहुत ज्यादा है, तो यहां यद बोलकर क्या मुराद है, सखावत, इसलिए क्योंकि हाथ जो है वो सबब होता है सखावत का, हाथ के जरिए सखावत की जाती है, तो सबब बोलकर किसका इरादा किया गया, मुसबब का, यद बोलकर सखावत का इरादा, यहां पर भी तमलीक सबब है किसका, मिलके मुता का, तो लिहाजा सबब बोलकर मुसबब का इरादा सही है, बात समझ में आ गई। तो सबबियत मजाज का एक तरीका है, मजाज मुरसल के मैंने बताया था कोई 20-25 इलाके हैं, उनमें से एक इलाका सबबियत वाला भी है, तो लिहाजा यहां मजाज का तरीका मौजूद है, तो तमलीक बोलकर निकाह और तजवीज का इरादा सही है भाई। मालूम हुआ कि हिबा तमलीक सदका बेअ वगैरह इनके जरिए निकाह का इरादा करना सही है, तो निकाह और तजवीज इनका मजाजी माना हो सकता है, सबब बोलकर किसका इरादा किया जाए, मुसबब का इरादा किया जाए, और मैंने आपको बतलाया था कि मजाजी माना के लिए हमेशा कोई ना कोई करीना चाहिए, एक तो नियत चाहिए और साथ करीना भी चाहिए, सुनने वाले को भी पता चले, यह मसलन एक शख्स जो है वो किसी औरत का निकाह किसी आदमी से करवा रहा है, और वो लफ्ज क्या बोलता है कि मैं फलां औरत आपको तोहफे में दे दी, और इरादा किसका कर रहा है, निकाह का, या मैंने फलां औरत आपको सदका कर दी और इरादा निकाह का है, या मैंने आपको फलां औरत का मालिक बना दिया, या फलां औरत मैंने आपको बेच दी, इरादा किसका कर रहा है, निकाह का कर रहा है, मालूम है मजाजी माना का इरादा कर रहा है, और मजाजी माना के लिए हमेशा करीना चाहिए, वरना तो लफ्ज सुनते ही जहन फौरन किस तरफ जाता है, हकीकी माना की तरफ जहन जाता है, मजाजी माना की तरफ नहीं जाता, मजाजी माना के लिए कोई करीना चाहिए, और करीना मैंने आपको बतलाया था वो लफ्जिया भी हो सकता है और गैर लफ्जिया भी हो सकता है, तो कभी तो इस मकाम पर करीने लफ्जिया मौजूद होगा, मसलन वो महर को साथ जिक्र कर देता है, मैंने फुला औरत आपको बेच दी 1,00,000 रुपए महर के इवज, बात समझ में आ रही है, तो इसने महर को जिक्र कर दिया, भाई ब्याव शिरा के अंदर तो महर नहीं आया करता, महर तो किसमें आता है, निकाह में, मालूम हुआ ब्या बोलकर किसका इरादा है, निकाह का, या उसने सदके और हिबा का लफ्ज बोला है या तमलीक का लफ्ज बोला है और साथ महर को जिक्र कर दिया, भाई महर तो इन चीजों में नहीं आता, मालूम हुआ ये हिबा सदका वगैरह बोलकर किसका इरादा है, निकाह का इरादा है, किससे पता चला, महर से पता चला, यानी महर के लफ्ज से पता चला, तो ये करीने लफ्जिया हुआ, क्या हुआ, करीने लफ्जिया हुआ, लेकिन बाज़ औक़ात निकाह में महर को जिक्र ही नहीं किया जाता, तो फिर महर मिसल आ जाता है, आगे तफसील आ जाएगी भाई महर के बारे में, तो बहरहाल महर को कभी जिक्र नहीं किया जाता, फिर भी करीना तो चाहिए, क्योंकि आप बैअ या हिबा या तमलीक या सदका के लफ्ज को किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, मजाजी माना में, और मजाज के लिए क्या चाहिए, करीना चाहिए। तो करीना यहां मौजूद है कि आप एक आजाद औरत का निकाह करवा रहे हैं और आजाद औरत का हिबा नहीं किया जा सकता, आजाद औरत को किसी के ममलूका नहीं बनाया जा सकता, आजाद औरत को किसी पर सदका नहीं किया जा सकता, आजाद औरत को किसी के हाथ बेचा नहीं जा सकता। तो यह महल ही नहीं है हिबा का, यह औरत जो आजाद औरत है, न यह हिबा का महल है, न यह तमलीक का महल है, न यह सदके का महल है, न यह बेअ का महल है। तो इसका आजाद होना ही बतला रहा है कि यहां इन लफ्जों के हकीकी माना मुराद नहीं। तो यह करीना हो जाएगा कि यहां हकीकी माना मुराद नहीं बल्कि मजाजी माना मुराद है। उसके बाद साहिब हिदायत ने आपको बतलाया था कि बेअ के लफ्ज से भी अक्द निकाह मुनाकिद हो जाएगा, और यही कौल सहीह है। इसके जरिए रद किया अबू बकर आमश रहिमहुल्लाह के कौल को, वो फरमाते हैं कि बेअ के लफ्ज से निकाह मुनाकिद नहीं होगा। वजह यह कि बेअ कहते हैं मुबादलतुल माल बिल माल, यानी माल का माल के साथ तबादला हो, दोनों तरफ माल होना चाहिए, और निकाह के अंदर मर्द पर तो माल आता है लेकिन औरत की तरफ से तो माल नहीं, औरत की तरफ से तो वो मर्द मुनाफा का मालिक बनता है, किसका मालिक बनता है। तो एक तरफ तो माल आ रहा है, मर्द को माल देना पड़ेगा, महर देना पड़ेगा बीवी को, लेकिन बीवी की तरफ से तो माल नहीं है बल्कि क्या है, मिलके मुता हासिल हो रहा है खावंद को। लिहाजा वो फरमाते हैं बेअ के लफ्ज से निकाह मुनाकिद नहीं होगा। लेकिन साहिब हिदायत ने बताया कि सही कौल यह है कि बेअ के लफ्ज से निकाह मुनाकिद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बेअ जो है वो तमलीकुल ऐन फिलहाल का फायदा देती है। बेअ में क्या है, कोई शख्स किसी चीज की जात का मालिक बनता है और उसी वक्त मालिक बनता है, लिहाजा जो भी लफ्ज ये तीन फायदे देगा उससे अक्द निकाह मुनाकिद हो जाएगा, और ये तीनों फायदे बेअ से हासिल हो रहे हैं। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया था कि इजारा के लफ्ज से अक्द निकाह मुनाकिद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इजारा के अंदर तमलीक ऐन नहीं होती बल्कि तमलीक मुनाफा होती है, मुनाफा का मालिक दूसरे को बनाया जाता है, हालांकि हमने जाब्ता बतला दिया कि निकाह सिर्फ उन लफ्जों से मुनाकिद होगा जो तमलीक ऐन का फायदा देंगे, किसका, तमली, और इजारा तो तमली के आयन का फायदा नहीं देता, लिहाजा इसके जरिए अक्द निकाह मुनाकिद नहीं होगा। जबकि इमाम करखी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि इजारा के लफ्ज से भी अक्द निकाह मुनाकिद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो फरमाते हैं कि निकाह के अंदर भी खावंद की तरफ से तो माल है और बीवी की तरफ से उसे क्या हासिल हुआ, मिलके मुता, तो एक तरफ से मुनाफा है और एक तरफ से क्या है, माल है, तवज्जो है। और इजारा में भी इसी तरह होता है, आप कोई चीज किराए पर लाते हैं तो आप पैसे देते हैं, मसलन गाड़ी ले आए या मोटरसाइकिल आप किराए पर ले आए तो आप पैसे देते हैं और बदले में आप उस गाड़ी या मोटरसाइकिल के मुनाफा जो हैं वो आप हासिल करते हैं, तो एक तरफ मुनाफा है और एक तरफ माल है। तो इजारा में भी एक तरफ मुनाफा और माल, और निकाह में भी एक तरफ माल और दूसरी तरफ मुनाफा, इसलिए वो फरमाते हैं कि इजारा के लफ्ज से निकाह मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन साहिब हिदायत ने बतलाया कि सही कौल के मुताबिक इजारा के लफ्ज से निकाह मुनाकिद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जाब्ता वही है जो हमने बयान कर दिया कि निकाह सिर्फ उन लफ्जों से मुनाकिद होता है जो तमलीक ऐन का फायदा दें, और इजारा तो तमलीक ऐन का फायदा नहीं देता, उसमें तो सिर्फ मुनाफा की तमलीक होती है। बात समझ में आ गई। और इस मिसाल से भी इसकी वजाहत होती है, एक शख्स जो है वो किसी बांदी को किराए पर लाता है कि वो उसके घर काम काज करे एक महीने तक, उसके बच्चों को संभाले, अब ये बांदी को किस पर लाया, इजारे पर लाया, तवज्जो है, तो ये बांदी से और मुनाफा तो हासिल कर सकता है, घर के काम वगैरह वो सारे करेगी, ये मुनाफे ही तो हैं, तवज्जो है, लेकिन सोहबत के मुनाफे इसको हासिल नहीं, सोहबत इसके लिए जायज नहीं है, हराम है। तो मालूम हुआ इजारे के लफ्ज से वो जो मुताए मखसूस है वो कभी भी हासिल नहीं होता। तो मालूम हुआ इजारा कभी भी मिलके मुता तक नहीं पहुंचाता, जबकि हिबा सदका बेअ वगैरह ये मिलके मुता तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके जरिए अव्वलन क्या आएगी, मिलके रकबी, और फिर मिलके रकबी से क्या आएगा, मिलके मुता आएगा, लेकिन इजारे में ऐसी कोई सूरत नहीं कि आपको मिलके मुता भी हासिल हो जाए, और हर मुता की बात नहीं हो रही, ये जो खास मुता यानी सोहबत करने का हक हासिल हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इजारा कभी भी मिलके मुता तक नहीं पहुंचाता, लिहाजा इसके जरिए निकाह मुनक़िद नहीं होगा, जबकि बाकी लफ्ज मिलके मुता तक पहुंचा देते हैं, लिहाजा उनके जरिए निकाह भी जायज हो जाएगा। बात समझ में आ गई जी? अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं قال ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين او رجل وامرأتين عدولا كانوا او غير عدول او محدودين في القذف। अब साहिब हिदाया निकाह की शर्त जिक्र करने लगे हैं। याद रखो, हमारे नजदीक निकाह के अंदर शर्त है कि कम से कम दो गवाह होने चाहिए, दो गवाह, दो मर्द गवाह हों या एक मर्द और दो औरतें गवाह होंगी, फिर ही अक्द निकाह मुनाकिद होगा, वरना अक्द निकाह मुनाकिद नहीं होगा। भाई जी, तफसील मैंने आपको शुरू में चंद बहसें लिखवाई थी, वहां मैंने बयान कर दी थी। भाई जी देखिए, अब साहिब हिदाया वही बातें जिक्र करेंगे। कहते हैं काला वला या नाकिदु निकाहुल मुस्लिमीन। ये काला के फाइल साहिब कुदूरी हैं भाई, जमीर साहिब कुदूरी को राजे है, इसलिए क्योंकि आगे जो मतन आ रहा है वो कुदूरी की इबारत है भाई। तो काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला यनाकिदु निकाहुल मुस्लिमीना, और मुसलमानों का निकाह मुनाकिद नहीं होता। इसको चाहे अल मुस्लिमीन पढ़ें और चाहे तो तस्निया पढ़ लें, अल मुस्लिमीनी, दो मुसलमानों का निकाह मुनाकिद नहीं होता। दो मुसलमान यानी वो जो मर्द और औरत हैं जिनका आप निकाह करवाना चाहते हैं, उनका निकाह मुनक़िद नहीं होगा, मगर किसकी मौजूदगी में, दो गवाहों की मौजूदगी में। तो अल मुस्लिमैन इसको तस्निया भी पढ़ सकते हैं और अल मुस्लिमीन जमा भी पढ़ सकते हैं कि वला या नाकिदु निकाहुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का निकाह मुनक़िद नहीं होता। मुसलमान जो भी निकाह करें वो मुनक़िद नहीं होता, मगर यह कि दो गवाह उस निकाह में मौजूद हों। इबारत समझ में आ गई? तो कहते हैं वला यनाकिदु निकाहुल मुस्लिमीन, और मुसलमानों का निकाह मुनाकिद नहीं होता, इल्ला बिहुजूरी शाहिदैनी, मगर दो गवाहों की मौजूदगी से। हुजूर का माना हाजिर होना, दो गवाहों की मौजूदगी में, उनके हाजिर होते हुए, बिहुजूरी शाहिदैनी, दो गवाहों की मौजूदगी के साथ, हुर्रैनी आकिलैनी बालिगैनी मुस्लिमैन। आगे सिफात जिक्र कर रहे हैं उन गवाहों की कि वो जो दो गवाह हैं, हुर्रैनी, आजाद होने चाहिए, गुलाम नहीं। भाई याद रखो, सिर्फ गुलाम मौजूद हो अकद के अंदर तो अकद निकाह मुनाकिद नहीं होगा भाई। और आकिलैनी, वो दोनों गवाह आकिल हों भाई, यानी मजनून और पागल ना हो भाई। अगर अक़्द निकाह में सिर्फ पागल या मजनून मौजूद हैं तो अक़्द निकाह मुनाकिद नहीं होगा। बालिगैनी, और वो गवाह जो हैं दोनों बालिग हों भाई, यानी नाबालिग और बच्चे ना हो भाई। सिर्फ अगर बच्चे मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में निकाह मुनाकिद नहीं होगा। मुस्लिमैनी, और वो दोनों गवाह मुसलमान होने चाहिए भाई। तो कहते हैं वला यनाकिदु निकाहुल मुस्लिमीन इल्ला बिहुजूरी शाहिदैन हुर्रैन आकिलैन बालिगैन मुस्लिमैन, और मुनाकिद नहीं होता मुसलमानों का निकाह मगर दो ऐसे गवाहों की मौजूदगी के साथ, हुर्रैन जो आजाद हों, आकिलैन अकल वाले हों, बालिगैन बालिग हों, मुस्लिमैन मुसलमान हों। मैंने शुरू में चंद बातें आपको लिखवाई थी भाई, चंद बहसें आपको लिखवाई थी, और वहां मैंने आकिलैनी और बालिगैनी के बजाय मुकल्लफैन लिखवाया था भाई। आकिलैनी और बालिगैन की जगह क्या लिखवाया था? मुकल्लफैनी। मुकल्लफ का माना है जिम्मेदार भाई, जिसको अहकाम शरीयत का जिम्मेदार बनाया है अल्लाह ने, जिन पर अहकाम शरीयत लागू होते हैं उसको कहते हैं मुकल्लफ भाई। और मुकल्लफ उसको कहेंगे जो आकिल भी हो और बालिग भी हो भाई। جو عاقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، وہ احکام شریعت کا پابند اور ذمہ دار بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے بھائی. اسی طرح بچہ جو ہے نابالغ جو ہے وہ بھی مکلف نہیں ہے بھائی، یعنی احکام شریعت اس پر لاگو نہیں ہوں گے. تو مکلف کے اندر یہ دونوں قیدیں آ گئیں بھائی. مکلف کسے کہتے ہیں؟ جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو بھائی. اور وہاں پر میں نے ایک دو شرطیں اور بھی لکھوائی تھیں آپ کو کہ سامعین قولہما، کہ یہ جو دونوں گواہ ہیں یہ عقد کرنے والوں کے قول کو سنیں، یہ دونوں کے قول کو سنیں، فاہمین اور اس کو سمجھیں بھائی. یہ ایجاب اور قبول کو سننے والے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے والے بھی ہیں، یعنی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ جس زبان میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے گواہوں کو وہ زبان ہی نہیں آتی، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بات آپس میں ہو رہی ہے. تو گواہوں کے لیے کیا ضروری؟ کہ ایجاب و قبول کو سنے بھی اور اس کا معنی بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو بھائی، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے بھائی. لیکن صاحب ہدایہ نے یہ دو شرطیں ذکر نہیں فرمائی بھائی کہ دونوں کیا ہیں، ایجاب اور قبول کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی. وجہ یہ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے بھائی کہ جب نکاح کے اندر یہ دو گواہ ہیں، اور نکاح تو نام ہی کس چیز کا ہے؟ وہ جو ایجاب اور قبول ہوگا. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ وہ جو ایجاب اور قبول ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر ایک ربط آ جائے گا. تو یہ ایجاب و قبول نکاح کے ارکان ہیں، یہ اس ایجاب اور قبول کو سنیں گے تو یہ اس کے گواہ بھی بن گئے. اگر سنا ہی نہیں تو پھر گواہ کس چیز کے بھائی؟ تو وہاں پر صرف موجود ہونا کافی نہیں، بلکہ کیا کریں، وہ گواہ ایجاب اور قبول کو سنیں بھی اور اس کا معنی بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو، پھر ہی ہم کہیں گے یہ اس عقد کے گواہ ہیں، یہ اس عقد کے گواہ ہیں. کیونکہ نکاح تو اس ایجاب اور قبول اور اس سے آنے والے جوڑ کا نام ہے، لہذا وہ ایجاب اور قبول سنیں گے تو ہم کہیں گے یہ اس عقد کے گواہ ہیں. اگر انہوں نے ایجاب اور قبول ہی نہیں سنا تو کس چیز کے وہ گواہ بنے بھائی؟ تو اس لیے صاحب ہدایہ نے سامعین قولہما اور فاہمین کی قید کو ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ یہ بات ظاہر تھی بھائی کہ جب گواہ ہیں تو سامعین بھی ہوں گے اور فاہمین بھی ہوں گے بھائی. اور نیز علماء فرماتے ہیں کہ دونوں گواہ جو ہیں اس ایجاب اور قبول کو اکٹھا سنیں ایک ہی وقت میں، ایسا نہیں کہ ایک گواہ بیٹھا تھا اس کے سامنے ایجاب اور قبول کر لیا اور پھر وہ گواہ چلا گیا، دوسرا گواہ آیا اور اس کے سامنے پھر کیا کر لیا، ایجاب اور قبول کر لیا. اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ سامعین ہوں معن بھائی، اکٹھے ایک ہی وقت میں ایجاب اور قبول کو سن لیں، پھر ہی عقد نکاح منعقد ہوگا. اور یاد رکھنا یہ جو چار صفات ہیں گواہوں کی، حرینی، عاقلینی، بالغینی، مسلمینی، یہ لازمی صفات ہیں گواہوں کی. گواہوں میں یہ صفات ہوں گی تو پھر ہی عقد نکاح منعقد ہوگا. اگر ان میں سے ایک بھی صفت کم ہوئی کسی گواہ کے اندر تو پھر اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا. دونوں گواہوں میں ان صفات کا ہونا لازمی ہے بھائی. جی آگے دیکھیے، کہتے ہیں رجلینی او رجلین و امرأتین، وہ جو گواہ ہیں وہ دونوں مرد ہوں، او رجلین و امرأتین، یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں. آپ جانتے ہیں بھائی کہ عام معاملات کے اندر گواہ جو ہیں دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، تو نکاح کے باب میں بھی اسی طرح ہیں، دونوں گواہ یا کیا ہوں، مرد، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر دونوں گواہ مرد ہونے چاہیے، نکاح کے باب میں عورتوں کی گواہی سرے سے قبول ہی نہیں ہے بھائی. آگے دیکھیے، کہتے ہیں عدول ان کانو او غیر عدول، عدول جمع ہے عادل کی بھائی، عادل. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ گواہ جو ہیں وہ عادل ہونے چاہیے، گواہ کیا ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے. اور عادل کا عام ترجمہ آپ کریں تو وہ بنتا ہے انصاف کرنے والا. گواہ کیا ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا. نہیں، یہاں یہ معنی نہیں کریں گے انصاف کرنے والا، بلکہ یہاں عادل کا معنی کریں گے قابل اعتماد. گواہ قابل اعتماد ہونا چاہیے. آپ قاضی بن گئے ہیں، دو افراد آ کر کسی معاملے میں گواہی دیتے ہیں، تو آپ ان کی گواہی سنتے ہی فوراً فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ گواہوں کا پتہ کروائیں گے، कि ये गवाह काबिल एतमाद भी हैं या नहीं, इनकी बात पर एतबार भी किया जा सकता है कि एतबार नहीं किया जा सकता। तो आदिल का क्या माना है? काबिल एतमाद। और आदिल किसे कहते हैं भाई, आदिल किसे कहते हैं? तो उलमा लिखते हैं कि आदिल वो शख्स है जो कबीरा गुनाहों से बचता हो और सगीरा पर इसरार नहीं करता। इसरार स्वाद के साथ है भाई, असर युसिरो इसरार भाई, यानी सगीरा पर इसरार नहीं करता, यानी मुसलसल सगीरा नहीं करता चला जाता, बार बार सगीरा नहीं करता भाई। वो याद रखो, सगीरा गुनाह भी बार बार किया जाए, उसकी परवाह ही ना की जाए, तो वो कबीरा बन जाता है भाई। तो आदिल किसे कहते हैं? जो कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाता हो। कबीरा गुनाह मसलन चोरी, डाका, जिना, शराब नोशी वगैरह, ये कबीरा गुनाह वो बिल्कुल नहीं करता, इनसे अपने आप को बचाता है। और सगीरा गुनाहों पर इसरार नहीं करता, यानी उन्हें बार बार नहीं करता, यानी सगीरा गुनाह उसे हो तो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन बार बार बेफिक्री के साथ वो उन गुनाहों को करता ही चला जाए, वो ऐसा ना हो भाई। और नीज घटिया अफाल से भी वो अपने आप को बचाता हो भाई। घटिया अफाल जैसे मसलन रास्ते में खाना पीना भाई, मसलन कोई शख्स है और बाजार में जा रहा है और कोई चीज खरीद ली और चलता हुआ खाता हुआ जा रहा है भाई। याद रखो, मुआज़्ज़ज़ आदमी ऐसा नहीं करता भाई। और इसी तरह बाज लोग रास्ते में पेशाब करते हैं, जहां पेशाब आया दीवार की तरफ रुख करके बैठ गए, मुआज़्ज़ज़ आदमी ऐसा कभी नहीं करता भाई। तो गवाह जो हैं वो काबिल एतमाद होने चाहिए। और काबिल एतमाद किसे कहेंगे? जो कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाता है, सगीरा पर इसरार नहीं करता और घटिया अफाल से, घटिया आदतों से भी अपने आप को बचाता है भाई। तो कहते हैं उदूलन कानू औ गैरा उदूल, ये उदूल जमा है आदिल की भाई। साहिब कुदूरी फरमाते हैं कि ये जो निकाह के अंदर दो गवाह हैं, ये चाहे आदिल हो या गैर आदिल, भाई वैसे तो गवाहों का आदिल होना जरूरी है, लेकिन निकाह के अंदर आदिल हो या आदिल न हो, जैसे भी गवाह हुए दो, उनकी मौजूदगी में निकाह मुनाकिद हो जाएगा। यहां एक और बात जहन में आई, वो भी याद रखें। आपने अमूमन पढ़ा होगा और सुना होगा कि गवाह आदिल होने चाहिए, यानी गवाह आदिल होंगे तो काजी उनकी गवाही कबूल करेगा, और अगर गवाह आदिल नहीं तो फिर काजी उनकी गवाही भी कबूल नहीं करेगा भाई। लेकिन तफसील याद रखो कि गवाह आदिल हो तो काजी के लिए उसके मुताबिक फैसला करना जरूरी हो जाता है भाई। जब एक मसले के अंदर भाई दो आदिल गवाह आ गए और उन्होंने उसकी गवाही दे दी, तो अब काजी जो है उस पर लाजिम हो गया कि इन्हीं की गवाही के मुताबिक फैसला करे। अगर वो इनकी गवाही के मुताबिक फैसला नहीं करता तो याद रखो ये काजी इंदल्लाह मुजरिम है भाई। तो दो आदिल आदमी जब गवाही देने आ जाए तो काजी पर उनकी गवाही कबूल करना और उसके मुताबिक फैसला करना लाजिम हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि गैर आदिल यानी कोई फासिक आदमी जो है वो गवाही देने आए तो काजी उसकी गवाही कबूल नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि काजी जो है उस फासिक आदमी के बारे में गौर करेगा। अगर उसका ख्याल यह हुआ कि यह शख्स है तो फासिक लेकिन इस मामले में सच बोल रहा है, तो फिर काजी जो है फासिक आदमी की गवाही भी कबूल कर सकता है। फासिक आदमी वो है जो गुनाहों की परवाह ही नहीं करता भाई, दीनी मामलात की परवाह ही नहीं करता, गुनाह करता चला जा रहा है, तो ये फासिक आदमी है। और जो शख्स दीनी चीजों का ख्याल नहीं रखता, उसमें दिलों में बदगुमानी आती है कि जब ये दीनी चीजों का ख्याल नहीं रखता तो लोगों के हक का ख्याल क्या रखता होगा, तो ये कहीं झूठ ना बोल रहा हो भाई, तो उसके बारे में झूठ की बदगुमानी होती है, लिहाजा इसलिए फांसी की गवाही कबूल नहीं की जाती। लेकिन मैंने बताया ये मुतलक नहीं है, काजी गौर करेगा। अगर उसको कराइन से मालूम हो और लोगों से पता चले कि ये है तो फासिक लेकिन ये झूठ नहीं बोलता, तो फिर उसकी गवाही को काजी कबूल कर सकता है और उसके मुताबिक फैसला कर सकता है। बाज लोग होते तो फासिक हैं लेकिन उन्होंने लोगों के अंदर एक इज्जत बनाई होती है, कोई एक उसमें कमी है, कोई गुनाह वगैरह तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल लोगों में उसने अपनी एक इज्जत बनाई होती है भाई। तो काजी को अगर अंदाजा हो जाए, पता चल जाए, मालूम हो जाए कि ये शख्स जो है सच बोल रहा है, तो फिर फासिक की गवाही पर भी काजी फैसला कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो निकाह के अंदर इन्होंने बतलाया कि गवाह चाहे आदिल हो या गैर आदिल, वो गवाह बन सकते हैं और उसे निकाह मुनाकिद हो जाएगा। अब महदूदीन फिल कज़्फ़ी, या वो गवाह जो हैं वो महदूद फिल कज़्फ़ हो, या वो गवाह क्या हो, महदूद फिल कज़्फ़ हो। भाई महदूद हद से है, हद हद वो सजा जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हो उसको हद कहते हैं। याद रखो काजी जो सजाएं देता है वो दो किस्म की हैं, कुछ को हुदूद कहते हैं और कुछ को ताजीर कहते हैं। हद वो है जो अल्लाह की तरफ से मुकरर है और कोई इंसान उसमें कमी बेशी नहीं कर सकता। मसलन अल्लाह की तरफ से चोरी की सजा मुकरर है कि चोर का हाथ काट दिया जाए। अब जब काजी के पास गवाहों के जरिए ये बात साबित हो जाए या वो चोर खुद इकरार कर ले कि मैंने चोरी की है, तो काजी क्या फैसला करेगा कि इसका हाथ काट दिया जाए। अब इस सिलसिले में काजी किसी की सिफारिश कबूल नहीं कर सकता, काजी कोई और सजा नहीं दे सकता, क्योंकि यह सजा किसकी तरफ से मुकरर है, अल्लाह की तरफ से मुकरर है। तो जो भी सजा अल्लाह की तरफ से मुकरर हो उसको हद कहते हैं। और याद रखिए हुदूद जो है वो छह हैं भाई, हुदूद कितनी है, छह हैं जो अल्लाह की तरफ से मुकरर हैं। मसलन जैसे एक हद जिना है, कोई शख्स जिना कर ले और गवाहों से साबित हो जाए उसका जिना, या वो खुद इकरार कर ले, तो अगर वो शादीशुदा हो तो उसको रजम किया जाता है, संगसार किया जाता है, पत्थर मार मार कर उसको कत्ल कर दिया जाता है, और अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाते हैं। इसी तरह एक हद है शुरबे खमर की, याद रखो अगर कोई शख्स शराब पी ले तो उस पर हद जारी की जाएगी और उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे भाई। इसी तरह चोरी की हद क्या है, चोर का हाथ काटा जाएगा। इसी तरह डाकू की हद क्या है कि उसका एक हाथ और मुखालिफ तरफ का पांव काटा जाएगा। तो ये सजाएं जो अल्लाह की तरफ से मुकरर हैं ये हुदूद कहलाती हैं, और इनमें किसी को किसी किस्म का रद्दो बदल करने और सफारिश कबूल करने का इख्तियार नहीं है। जबकि इसके अलावा जो बाकी सजाएं हैं वो ताजीर कहलाती हैं, और वो काजी अपनी मर्जी के मुताबिक देता है, जिसमें वो मसलहत समझे उसी के मुताबिक वो सजा दे सकता है। बात समझ में आ रही है, एक ही जैसा जुर्म किया है दो अफराद ने, काजी एक को थोड़ी कम सजा दे दे एक को थोड़ी ज्यादा दे दे, ये काजी के इख्तियार में है। क्योंकि बाज लोग जो होते हैं वो थोड़ी सजा से ही ठीक हो जाते हैं, और बाज लोग वो हैं कि जिनको ज्यादा भी सजा दी जाए तो वो उन पर असर नहीं होता। तो ताजीर के अंदर सफारिश भी की जा सकती है और ताजीर के अंदर काजी की मर्जी है जैसी सजा देना चाहे। तो ये जो हद जिस पर जारी हो गई, हद जिसको लग गई, उसको कहते हैं महदूद भाई। क्या कहेंगे, महदूद, यानी जिस पर हद जारी की गई है। और ये महदूद फिल कज़्फ भाई, कज़्फ काफ दाल और फा है, कज़्फ का माना है किसी पर तोहमत लगाना, और यहां मुराद है जिना की तोहमत। कोई शख्स अगर किसी दूसरे पर जिना की तोहमत लगाए भाई, तो शरीयत ने उस शख्स को इख्तियार दिया है जिस पर तोहमत लगाई गई है कि वो काजी के पास चला जाए और हद कज़्फ का मुतालबा करे कि काजी साहेब इसने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की है, इसने मुझ पर जिना का इल्जाम लगाया है। तो काजी उस शख्स को तलब करेगा जिसने तोहमत लगाई थी, और वो दो गवाह गवाही देंगे कि हां जी इसने क्या किया, हमारे सामने ये जो मुद्दाई है इस पर जिना की तोहमत लगाई है। और फिर काजी उस शख्स से कहेगा कि तुमने जिना की तोहमत लगाई है, अब 4 गवाह लेकर आओ, जिना साबित करो, तुमने जिना का इल्जाम लगाया है, अब जिना को साबित करो, 4 गवाह लेकर आओ। और जब वो 4 गवाह न ला सके तो उस पर हद कज़्फ जारी की जाएगी, 80 कोड़े लगाए जाएंगे भाई। और नीज इस शख्स की आइंदा किसी भी मसले में गवाही कबूल नहीं की जाएगी, किसी भी मामले में इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीन यरमून अल मुहसनाती, और वो लोग जो पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाएं, والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں یعنی زنا کی، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر یہ چار گواہ نہ لے کر آئیں، فجلدوہم ثمانین جلدہ، تو پھر ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو کبھی بھی. تو عند الاحناف ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. عند الاحناف یہ حد کا حصہ ہے، عند الاحناف یہ حد کا حصہ ہے. دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ حد کا حصہ نہیں ہے، وہ توبہ کر لیں گے تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی، لیکن عند الاحناف یہ حد کا حصہ ہے. اور اللہ فرما رہے ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. تو اب زندگی بھر یہ شخص جس پر حد قذف لگ چکی ہے، 80 کوڑے لگ چکے ہیں، یہ کسی مسئلے میں جا کر قاضی کے پاس گواہی نہیں دے سکتا، قاضی اس کی گواہی سنے گا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. تو یہ جو محدود فی القذف ہے، یاد رکھو یہ نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں. ایک مرد اور عورت نکاح کرنے لگے، انہوں نے دو ایسے گواہ بٹھا دیے جو کیا ہیں، محدود فی القذف ہیں. تو یاد رکھو فقہا فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا ان گواہوں کی موجودگی میں. تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیسے ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا؟ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. تو احناف جواب دیتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں بھئی، ایک ہے تحمل شہادت اور ایک ہے ادائے شہادت. یعنی یوں کہو آسان لفظوں میں، ایک ہے گواہ بننا اور ایک ہے گواہی دینا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. گواہ بن سکتے ہیں یہ، گواہی دے نہیں سکتے بھائی. یہ گواہ بن سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے. گواہ بننے کو کہتے ہیں تحمل شہادت، یعنی یہ شہادت کو اٹھا سکتا ہے، یعنی یہ شہادت کی اس میں صلاحیت ہے، اس میں اہلیت ہے، یہ گواہ بن سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ تحمل شہادت. یہ لفظ آگے بار بار میں استعمال کروں گا، لہذا اچھی طرح سمجھ لیں بھائی، ایک کیا ہے تحمل شہادت اور ایک کیا ہے ادائے شہادت. شہادت یعنی گواہی ادا کرنا قاضی کے پاس جا کر. تو تحمل شہادت آسان لفظوں میں گواہ بننا، تو یہ گواہ بن تو سکتے ہیں لیکن ادائے شہادت نہیں کر سکتے، یعنی قاضی کے پاس جا کر گواہی کو ادا کر دیں ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. تو احناف کیا کہتے ہیں کہ محدود فی القذف کی موجودگی کے اندر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے. بھئی کیسے ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے؟ آپ نے تحمل اور ادا کو الگ الگ کیسے کر دیا؟ تو فقہا جواب دیتے ہیں بھئی احناف کی باتیں عجیب گہری باتیں ہوتی ہیں، انسان سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے. بھئی فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اسی سے پتا چل رہا ہے کہ ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے. اگر ان میں گواہ بننے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی نہ فرماتے ان کی گواہی قبول نہ کرو. ان میں صلاحیت ہے، یہ گواہ بن سکتے ہیں، اسی لیے تو اللہ فرما رہے ان کی گواہی قبول نہ کرو. بات ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی میرا خیال، سنو بھائی اور تفصیل سمجھو، مثالوں سے اچھی طرح وضاحت ہوگی. بعض اوقات آپ اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کسی مسئلے کے اندر کہ آپ نہ دیکھیں، آپ ادھر نہ دیکھیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے بعض اوقات کسی ساتھی کو کہ آپ ادھر کو نہ دیکھیں بھائی، تو آپ کا یہ کہنا ہی بتلا رہا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، جبھی تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں. اگر وہ نابینا ہوتا، دیکھ ہی نہ سکتا، تو کیا کوئی شخص اس کو کہتا کہ ادھر نہ دیکھو؟ نہیں. ادھر نہ دیکھو یہ اسی شخص کو کہا جائے گا جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہوگی بھائی. اسی طرح کسی کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہماری باتیں نہ سنیں بھائی، یہ اسی شخص کو کہا جائے گا جس میں سننے کی صلاحیت ہوگی. اگر ایک شخص بہرا ہے، اس کو کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ آپ ہماری باتیں نہ سنیں. تو یہاں اللہ منع فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو، मालूम हुआ इनमें गवाही की सलाहियत है, जब ही अल्लाह फरमा रहे हैं इनकी गवाही कबूल न करो, दलील समझ में आ गई। तो लिहाजा ये जो महदूद फिल कज़्फ़ हैं, हमारे नजदीक तहम्मुल शहादत की इनमें सलाहियत है, अलबत्ता अदाए शहादत ये नहीं कर सकते, तो इनकी मौजूदगी में भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई, हासिल कलाम क्या हुआ, निकाह के अंदर दो गवाहों का होना जरूरी और उन गवाहों में चार सिफतों का होना लाजिम है, क्या वो आजाद हों और आकिल हों, बालिग हों और मुसलमान हों, और फिर वो दोनों या तो मर्द होने चाहिए या एक मर्द और दो औरतें होनी चाहिए, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, औरतों की गवाही निकाह में कबूल नहीं, मर्द ही होने चाहिए, और नीज गवाह चाहे आदिल हों या आदिल ना हो, दोनों सूरतों में निकाह मुनाकिद हो जाएगा, और अगर गवाह महदूद फिल कज़फ हुए फिर भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये गवाह बन रहे हैं, ये गवाही दे नहीं रहे, और गवाह बनने की और तहम्मुल शहादत की इनमें सलाहियत मौजूद है। भाई हां, अगर बाद में किसी वक्त जरूरत पेश आ गई और वो औरत अब निकाह से इनकार कर रही है और वो शख्स निकाह का दावा करता है, काजी के पास चला जाता है और कहता है काजी साहब ये दो गवाह मौजूद थे, वो जो महदूद फिल कज़फ थे उनको गवाह बनाने की कोशिश करता है अपने दावे के लिए, तो काजी उनकी गवाही कबूल नहीं करेगा। तो ये जो महदूद फिल कज़फ हैं ये गवाह तो बन सकते हैं लेकिन गवाही दे नहीं सकते। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, काला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस काला से मुराद साहिब हिदाया हैं। कौन मुराद हैं? साहिब हिदाया। भाई तो आगे साहिब हिदाया अब इस मतन की शरह करने लगे हैं भाई, तो उनके शागिर्दों ने यहां पर काला का लफ्ज जिक्र कर दिया कि यानी आगे अब साहिब हिदाया की बात शुरू हो रही है। तो काला साहिब हिदाया फरमाते हैं, ए आलम तू जान ले अन्न शहादत शर्तुन फी बाबिन निकाही, कि शहादत यानी गवाही जो है ये शर्त है निकाह के बाब में, लिकौलिही अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस फरमाने मुबारक की वजह से, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन, कि कोई निकाह है ही नहीं, इल्ला बिशुहूदिन, मगर किसके साथ? गवाहों के साथ। मालूम हुआ गवाहों के बगैर निकाह है ही नहीं। भाई शुहूद जमा है शाहिद की, भाई मालूम हुआ गवाह होंगे तो निकाह होगा, गवाह नहीं तो निकाह भी नहीं होगा। इस हदीस से पता चल रहा है कि गवाहों का होना शर्त है। भाई निकाह किस चीज का नाम है? ईजाब और कबूल का, और उसकी वजह से जो रबत आया। तो मालूम हुआ ये जो दो गवाह जो हैं ये अरकान निकाह तो नहीं, निकाह के अंदर तो ये दाखिल नहीं, जब निकाह के अंदर दाखिल नहीं लेकिन इनके होना जरूरी है तो इनको शर्त कहेंगे। भाई शर्त पूरी होगी तो मशरूत भी होगा, शर्त पूरी नहीं तो मशरूत भी नहीं, जैसे वुजू है तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन, कोई निकाह नहीं है बगैर गवाहों के। वह हुआ हुज्जतुन अला मालिकिन रहिमहुल्लाहु तआला फी इश्तिरातिल इलान, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह के अंदर एलान शर्त है, निकाह में एलान शर्त है, दो गवाहों का होना शर्त नहीं, कि एलान किया जाए लोगों में। भाई चुनांचे वो हदीस भी जिक्र फरमाते हैं, ये आपके हाशिए में हदीस दी हुई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिनु निकाह वलौ बिद्दुफी, आलिनु एलान से अमर का सीगा है, आलिनू तुम लोग एलान करो अन निकाह, निकाह का, वलाओ बि दुफी अगरचे दफ के जरिए हो। भाई दुफ भाई अरबी जुबान में कहते हैं जिसे उर्दू में हम दफ कहते हैं। भाई ये ढोल की तरह का एक आला है, अलबत्ता ढोल तो बड़ा होता है और वो उसके दोनों तरफ चमड़ा लगा होता है, दोनों तरफ से बजाया जाता है, जबकि दफ जो है वो छोटा होता है और उसके सिर्फ एक तरफ चमड़ा लगा होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि ए लोगों तुम निकाह का ऐलान करो अगरचे दफ के जरिए ही क्यों ना हो। भाई तो आलिनु निकाह वलौ बिद्दुफी, ए लोगों तुम निकाह का ऐलान करो अगरचे दफ के जरिए ही क्यों ना हो। तो ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह की दलील है, वो फरमाते हैं इसे मालूम हुआ कि ऐलान करना ये शर्त है, दो गवाह होना शर्त नहीं है भाई। तो हम कहते हैं नहीं, आपकी इस हदीस से इतना तो पता चलता है कि ऐलान वाजिब है, ऐलान इससे शर्त होने का तो पता नहीं चलता। हमारी हदीस जो है ला निकाह इल्ला बि शुहूदिन, कोई निकाह है ही नहीं इल्ला बि शुहूदिन, मगर किसके साथ? गवाहों के साथ। मालूम हो गवाहों के बगैर निकाह है ही नहीं भाई। तो हमारी हदीस से शर्त होने का पता चल रहा है और आपकी हदीस से ऐलान के शर्त होने का पता नहीं, सिर्फ वाजिब होने का पता चल रहा है। आलिनु अमर का सीगा आया और अमर किस लिए आता है? वजूब के लिए आता है। तो इतना तो पता चल गया कि ऐलान वाजिब है लेकिन उसके शर्त होने का पता नहीं। और आपकी इस हदीस पर भी हमारा अमल हो जाता है क्योंकि जब दो गवाह मौजूद हैं तो आलान युअलिनु, ऐलान का माना क्या है? इत्तला देना। क्या करना? इत्तला देना, बतलाना। तो दो गवाह हो गए तो ऐलान पाया गया या नहीं? दो अफराद को तो इत्तला हो गई, या एक मर्द और दो औरतें हैं तो तीन अफराद को तो इत्तला हो गई, तीन अफराद में तो ऐलान हो गया कि यह अकदे निकाह हुआ है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह हुआ हुज्जतुन अला मालिकिन रहिमहुल्लाह, यह अला जरर के लिए आता है। तो ये हदीस जो है हमारी, ये हुज्जत है यानी दलील है अला मालिकिन रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के खिलाफ, फिश्तिरातिल एलानी, एलान की शर्त लगाने में। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जो एलान की शर्त लगाई है उसमें हमारी ये हदीस उनके खिलाफ दलील है। इस हदीस से पता चल रहा है कि गवाह का होना शर्त है। दून शहादत, ना के शहादत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि ऐलान शर्त है, दून शहादती, शहादत यानी गवाही शर्त नहीं है। लेकिन हमने बतला दिए कि नहीं, गवाही का होना जरूरी है भाई। तवज्जो है
जी।
फिर समझो, फिर समझो, यहां तक क्या बहस हुई कि हमारे नजदीक जो शहादत है निकाह के अंदर ये शर्त है, गवाह होंगे तो निकाह होगा, गवाह नहीं तो निकाह भी नहीं। जैसे वुजू नमाज के अंदर शर्त है, वुजू है तो नमाज भी होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। और दलील जिक्र की कि हदीस में आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन, कोई निकाह नहीं है इल्ला बिशुहूदिन, मगर गवाहों के साथ, यानी गवाहों का होना जरूरी है निकाह में। गवाह होंगे तो निकाह होगा और गवाह नहीं तो निकाह भी नहीं होगा। हमारी यह हदीस जो है हुज्जत है इमाम मालिक रहमतुल्लाह के खिलाफ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऐलान करना शर्त है, शहादत शर्त नहीं। वो हदीस पेश फरमाते हैं आलिनु निकाह वलौ बिद्दुफी, कि निकाह का ऐलान करो वलौ बिद्दुफी, अगरचे दफ के जरिए हो। तो देखो वो ऐलान को शर्त करार देते हैं। हम कहते हैं कि आपकी हदीस से ऐलान के वाजिब होने का तो पता चला, ऐलान के शर्त होने का पता ना चला भाई। वाजिब और है, शर्त और है, शर्त का मकाम बड़ा ऊंचा है। शर्त तो वो है कि शर्त होगी तो मशरूत होगा, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। गोया शर्त भी रुकन जैसी है, जैसे रुकन पाया जाए तो वो चीज होगी, रुकन नहीं तो वो चीज भी नहीं। नमाज के अंदर जैसे नमाज के अरकान क्या है? कियाम है, रुकू है, सजदा है, इनमें से कोई एक चीज भी ना पाई गई तो नमाज ही नहीं होगी। इसी तरह शर्त होती है, शर्त होगी तो नमाज होगी, शर्त नहीं तो नमाज भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि रुकन शय के अंदर दाखिल होता है और शर्त उस शय से खारिज होती है
जी।
लेकिन जैसे रुकन का होना जरूरी उस चीज के लिए, इसी तरह शर्त का होना भी जरूरी होता है। तो यहां हमारी हदीस से पता चल रहा है ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन, कोई निकाह है ही नहीं मगर किसके साथ? गवाहों के साथ। मालूम हुआ बगैर गवाहों के कोई निकाह हो ही नहीं सकता। तो इससे पता चला कि निकाह के अंदर गवाह जरूरी हैं। और ये गवाह निकाह की हकीकत में तो नहीं दाखिल। निकाह की हकीकत तो क्या है? अरकान क्या है? ईजाब और कबूल है। और उसकी वजह से जो दोनों में अगद आ गया, रबत आ गया, जोड़ आ गया, जो हासिल बिल मस्तर आया भाई, तो लिहाजा निकाह के अरकान तो ईजाब और कबूल हो गए। तो गवाह वो निकाह की हकीकत में तो दाखिल नहीं, लेकिन उनके बगैर निकाह हो भी नहीं सकता। तो फिर इनको शर्त करार दिया जाएगा, वो चीज जिसका होना जरूरी हो और उसके बगैर कोई चीज ना हो सके और वो उस चीज की हकीकत में दाखिल नहीं है, तो फिर उसको क्या करार दिया जाता है? शर्त करार दिया जाता है। तो हमारी हदीस से पता चल रहा है कि निकाह के अंदर गवाह का होना शर्त है। यह है तो रुकन की तरह, लेकिन चूंकि निकाह की हकीकत से खारिज है इसलिए इसको शर्त करार देना पड़ा। और जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह की हदीस से सिर्फ ऐलान के वाजिब होने का पता चला। अलिनुन निकाह, यह अमर का सीगा है, अलिनु तुम लोग क्या करो, निकाह का ऐलान करो। इससे तो सिर्फ ऐलान के वाजिब होने का पता चला है, इससे यह तो पता नहीं चला कि ऐलान नहीं करोगे तो निकाह होगा ही नहीं, ऐलान नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे, ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा इसमें तो सिर्फ ऐलान के वाजिब होने का पता चल रहा है, ऐलान के शर्त होने का पता नहीं चल रहा। और नीस इस हदीस पर तो हमारा भी अमल हो जाता है, क्योंकि जब हम दो अफराद, दो आदमी गवाह बनाएंगे या एक मर्द और दो औरतों को गवाह बनाएंगे तो उनको देखो इत्तला हो गई। ऐलान का क्या माना है? इत्तला देना दूसरों को। तो यहां भी जब दो गवाह बिठाएंगे तो उन दोनों में ऐलान हो गया, उन दोनों गवाहों को पता चल गया निकाह का, या एक मर्द है और दो औरतें हैं तो उनमें गोया ऐलान हो गया, उनको पता चल गया निकाह का, तो हमारा भी इस हदीस पर अमल हो गया भाई, वाजिब पर हमारा भी अमल हो गया। तो इमाम मालिक रहमहुल्ला जो है उनके खिलाफ यह हदीस हुज्जत है भाई। आगे देखिए, वला बुद्ध मिन इतिबार الحريه فيها لان العبد لا شهاده له لعدم الولايه। भाई अब वो जो मतन में आया था, वला ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين, कि मुसलमानों का निकाह मुनाकिद नहीं होगा मगर दो गवाह होने चाहिए। और आगे मतन के अंदर कैदें जिक्र हुई थी कि वो गवाह क्या होने चाहिए, हुर्रैनी आजाद हों, आकिलैनी बालिगैनी मुस्लिमैनी, ये सारी शर्तें आखिर तक जिक्र हो रही हैं भाई। अब इनमें से हर एक की तफसील बयान करेंगे साहिब हिदाया कि गवाह आजाद होने चाहिए, इसकी शर्त क्यों लगाई, गवाह आकिल होने चाहिए, इसकी शर्त क्यों लगाई। तो इन सारों की अब तफसील बयान करेंगे साहिब हिदाया भाई। भाई यहां गवाहों से मुतालिक की कीमती बात याद रखिए भाई, कीमती बात याद रखिए। उलमा फरमाते हैं कि एक है तहम्मुल शहादत और एक है अदाए शहादत। तो बाज गवाह उनमें तहम्मुल और अदा दोनों की सलाहियत होगी, और बाज गवाह उनमें सिर्फ तहम्मुल की सलाहियत तो होगी, अदाए शहादत की सलाहियत नहीं। और बाज ऐसे अफराद होंगे जिनमें न तहम्मुल की सलाहियत है और ना अदा की। तो चार किस्म के अफराद हो जाएंगे भाई, चार किस्म के तहम्मुल और अदाए शहादत के एतबार से। कुछ वो लोग कि जिनमें तहम्मुल और अदा की सलाहियत है कामिल तौर पर। पहली किस्म क्या? जिनमें तहम्मुल और अदा की सलाहियत है कामिल तौर पर। और दूसरी किस्म वो है जिनमें तहम्मुल और अदा की सलाहियत है लेकिन कामिल नहीं बल्कि नाकिस तौर पर। तवज्जो है? तो वो जिनमें तहम्मुल और अदा की सलाहियत कामिल तौर पर है वो गवाह होंगे। वही चार सिफतें जिक्र करो कि वो गवाह क्या हो, आजाद हो, और वो गवाह क्या हो, आकिल हो, और बालिग हो, और मुसलमान हो, और साथ वो आदिल भी हो जी। तो जिस गवाह में भी ये पांच सिफतें होंगी, वो चार लाजिम सिफतें और साथ क्या हो, आदिल भी हो, तो ये जो गवाह है ये तहम्मुल शहादत भी कर सकता है और अदाए शहादत भी कर सकता है कामिल तौर पर जी। तो यूं कहो ये गवाह जिसके अंदर ये पांच सिफतें मौजूद होंगी वो अहले तहम्मुल भी है और अहले अदा भी है कामिल तौर पर। वो अहले तहम्मुल अदा है कामिल तौर पर, यानी वो गवाह बन भी सकता है और गवाही दे भी सकता है। और इस तरह के जब दो अफराद गवाही दे देंगे तो फिर काजी के लिए वैसा फैसला करना लाजिम हो जाएगा जी। तो गवाह की एक किस्म क्या है, जो अहले तहम्मुल भी है और अहले अदा भी है कामिल तौर पर। वो कौन सा गवाह है जिसमें कितनी सिफतें हों, पांच सिफतें हों, क्या आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और आदिल हो। दूसरी किस्म गवाह की वो है जो अहले तहम्मुल अदा है लेकिन नाकिस तौर पर, कामिल तौर पर नहीं, जिसमें पहली चार सिफतें तो मौजूद हैं लेकिन वो आदिल नहीं है, फासिक है, आदिल नहीं है, वो फासिक है। तो जो गवाह आजाद भी है, عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن عادل نہیں ہے بلکہ فاسق ہے. تو یہ جو گواہ ہے یہ اہل تحمل بھی ہے، اہل ادا بھی ہے، لیکن ناقص طور پر، کیونکہ یہ شخص فاسق ہے، یہ دینی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. اور جو شخص دینی امور کا خیال نہیں رکھتا وہ لوگوں کے معاملات کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے؟ بھائی دین پر چلنے والا ہوگا تو اسے اللہ کا خوف ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور جو شخص دل میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ لوگوں کا کیا خوف رکھے گا؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ کہیں یہ شخص جھوٹ نہ بول رہا ہو. لیکن بہرحال یہ شخص جو فاسق ہے، اس میں باقی صفتیں تو موجود ہیں، تو یہ اہل تحمل بھی ہے، اہل ادا بھی ہے، لیکن کامل طور پر نہیں بلکہ ناقص طور پر. تیسری قسم گواہ کی وہ ہے جو اہل تحمل تو ہیں لیکن اہل ادا نہیں. وہ گواہ بن تو سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے، جیسے محدود فی القذف. وہ شخص جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے، 80 کوڑے لگے ہیں بھائی. اور اسی طرح نابینا شخص، بھائی نابینا، یہ اہل تحمل تو ہیں، یہ گواہ بن تو سکتے ہیں لیکن اہل ادا نہیں، یہ گواہی دے نہیں سکتے. حد قذف والا تو اس لیے گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اور اندھا جو ہے وہ گواہ بن تو سکتا ہے، گواہی دے نہیں سکتا. اس لیے کیونکہ اندھے کو دکھائی نہیں دیتا، تو وہ صرف آواز سن کر کیا کرے گا؟ گواہی دے گا. تو ہو سکتا ہے اس سے کہیں غلطی نہ ہو جائے اس انسان کے پہچاننے میں. بھائی تو اندھا گواہ بن تو سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا. اور چوتھی قسم کے افراد وہ ہیں جو سرے سے گواہ بن ہی نہیں سکتے. بھائی جو گواہ بن ہی نہیں سکتے، اور وہ افراد ہیں کہ جن میں چار صفات لازمہ میں سے کوئی ایک صفت اس میں نہ پائی جائے. مثلاً آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، یا اسی طرح عاقل نہیں ہے بلکہ مجنون ہے، پاگل ہے بھائی، یا بالغ نہیں ہے بلکہ بچہ ہے، نابالغ ہے، یا مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے. تو یہ جو افراد ہیں، نہ یہ اہل تحمل ہیں اور نہ اہل ادا ہیں شہادت کے باب میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی قسم کے افراد ہو گئے گواہی کے معاملے میں؟ چار قسم کے. ایک قسم وہ ہے جو اہل تحمل بھی ہے اور اہل ادا بھی ہے کامل طور پر، اور دوسری قسم وہ ہے جو اہل تحمل اور اہل ادا ہے لیکن ناقص طور پر، اور تیسری قسم وہ ہے جو اہل تحمل تو ہے لیکن اہل ادا نہیں، اور چوتھی قسم وہ ہے جو نہ اہل تحمل ہے اور نہ اہل ادا ہے. بھائی تو ان میں سے یہ جو پہلی قسم تھی جن میں پانچ صفتیں پائی جائیں، آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان اور عادل، ان کی گواہی تو بالاتفاق قبول کی جائے گی سب کے نزدیک، سب کے نزدیک. اور وہ جو آخری قسم ہے ان کی گواہی بالاتفاق قبول نہیں کی جائے گی. بھائی وہ جو غلام ہے یا مجنون ہے یا بچہ ہے یا کافر ہے، بھائی ان کی گواہی بالاتفاق قبول نہیں کی جائے گی. اور جو دوسری قسم ہے، یعنی جو عادل نہیں ہے، جو اہل تحمل و ادا ہے ناقص طور پر، اس کے بارے میں غور کیا جائے گا کہ پتہ چل جائے، کچھ اندازہ ہو جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اور جبکہ تیسری قسم جو ہے وہ گواہ بن تو سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے، تو لہذا نکاح کے باب میں وہ گواہ بن سکتے ہیں اور ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ جی اب آئیے بھائی وہ صاحب ہدایت تفصیل بیان کرنے لگے ہیں ہر ایک کی. کہتے ہیں ولا بد من اعتبار الحریتی فیہا، اور ضروری ہے آزادی کا اعتبار کرنا، فیہا، یہاں ضمیر یا تو راجع کر لیں شہادت کو، آزادی کا اعتبار ضروری ہے، فیہا ای فی شہادتی، شہادت کے اندر، گواہی کے اندر، یا فیہا کی ضمیر راجع کر لیں پیچھے جو شہود کا لفظ آیا تھا حدیث کے اندر کہ ضروری ہے آزادی کا اعتبار کرنا، فیہا ای فی شہود، یہاں ضمیر راجع ہے کس کو؟ شہود کو، اور شہود جمع ہے کس کی؟ شاہد کی، اور جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے، تو جمع کی طرف واحد مؤنس کی ضمیر راجع کی جا سکتی ہے. چنانچہ ہدایہ کے بعض نسخوں میں یہاں فیہا کی جگہ فیہما ہے. بھائی کیا ہے؟ فیہما، اور فیہما ہو پھر تو یقینی طور پر یہ ہما ضمیر راجع ہے شاہدین کو. کہتے ہیں ولا بد من اعتبار الحریت فیہا, اور گواہی کے اندر آزادی کا اعتبار ضروری ہے. لان العبد لا شہادت له, اس لیے کیونکہ غلام جو ہے اس کی کوئی گواہی نہیں ہوتی. لعدم الولایت, ولایت نہ ہونے کی وجہ سے. ولایت کہتے ہیں اختیار کا ہونا کہ آپ کا قول غیر پر نافذ ہو جائے چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے, اس کو کیا کہیں گے کہ آپ کو اس پر ولایت حاصل ہے. جب آپ کا قول کسی کے خلاف نافذ ہو جائے چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں, یعنی اختیار, آپ کو اختیار ہے. اور غلام, غلام کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی, تو غیر پر کیا ولایت حاصل ہوگی؟ کیا غلام اپنا نکاح کر سکتا ہے خود اپنی مرضی سے؟ نہیں. اور کیا غلام خود کاروبار اور تجارت وغیرہ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو غلام کو تو اپنی ذات پر اختیار حاصل نہیں, اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں, تو غیر پر اسے ولایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو یہ جو شہادت ہوتی ہے نا, اس میں آپ کا قول غیر پر نافذ ہوتا ہے. شہادت میں آپ کا قول غیر پر نافذ ہوتا ہے. مثلا دیکھو, آپ گئے قاضی کے پاس اور آپ نے جا کر ایک مقدمہ کر دیا, ایک دعویٰ کر دیا کہ زید نے میرے 10 لاکھ روپے دینے ہیں, اور آپ دو گواہ بھی ساتھ لے گئے. اب قاضی نے زید کو بلوایا, ان دو گواہوں نے گواہی دی کہ قاضی صاحب ہم دونوں گواہ ہیں, ہمارے سامنے زید نے اسے 10 لاکھ روپے لیے تھے. اب زید انکار کر رہا ہے لیکن یہ دو گواہ قابل اعتماد ہیں, تو قاضی فیصلہ کر دے گا آپ کے حق میں. تو دیکھو وہ دو گواہوں کا قول زید پر نافذ ہو گیا یا نہیں؟ دو گواہوں کا قول, یہ قاضی نے آپ کے حق میں فیصلہ کس کی وجہ سے کیا؟ صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے کیا یا گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کیا؟ گواہوں کی گواہی کی وجہ سے. تو معلوم ہوا یہ گواہوں کا قول کس پر نافذ ہو گیا؟ زید پر نافذ ہو گیا. اور وہ تو نہیں چاہتا تھا میرے اوپر یہ قول نافذ ہو, وہ تو 10 لاکھ نہیں دینا چاہتا تھا, لیکن گواہوں کا قول اس پر نافذ ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گواہی میں کیا ہوتا ہے؟ غیر پر آپ کا قول نافذ ہو جاتا ہے, اور غیر پر آپ کا قول نافذ ہونا اس کو ولایت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولایت. اور غلام کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی, وہ تو نکاح قبول کر لے تو اس کا اپنا نکاح نہیں ہوتا, اس کے اپنے اوپر وہ اس کا قول نافذ نہیں ہوتا, تو غیر پر اس کا قول کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ دلیل سمجھ میں آئی کیا؟ کہ گواہی کس باب سے ہے؟ ولایت کے باب سے. ولایت میں کیا ہوتا ہے؟ غیر پر آپ کا قول نافذ ہوتا ہے, اور غلام کا قول تو اس کی اپنی ذات پر نافذ نہیں ہوتا, اس کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے. تو اگر دوسروں کے لیے اس کی گواہی مان لی جائے, پھر تو یہ کہنا لازم آئے گا کہ غلام کا قول کس پر نافذ ہو رہا ہے؟ غیر پر. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کا قول اپنے اوپر تو نافذ نہیں ہو سکتا, لیکن غیر پر نافذ ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب غلام کو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں, تو دوسروں پر بطریق اولا اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. یہ معنی ہے لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَتَ لَهُ, اس لیے کیونکہ غلام جو ہے اس کے لیے کوئی شہادت نہیں ہوتی. لِعَدَمِ الْوِلَایَتِ, ولایت نہ ہونے کی وجہ سے. تو جس کو ولایت ہوگی اس کو شہادت کا بھی حق ہوگا, اور جس کو ولایت حاصل نہیں اس کو شہادت کا حق بھی حاصل نہیں ہے. بھائی آگے دیکھیے, کہتے ہیں ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ, اور ضروری ہے عقل اور بالغ ہونے کا اعتبار کرنا. لأنه لا ولایت بدونهما, اس لیے کیونکہ ان کے بغیر بھی ولایت نہیں ہے. بھائی کوئی مجنون ہے, پاگل ہے, اس کو تو اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے. مجنون تو اپنا نکاح نہیں کر سکتا بھائی, آگے اس کا نکاح ہو گئی نہیں, وہ مجنون ہے بھائی, اس کو عقل ہی نہیں ہے, اس کو کیا پتا نکاح کس چیز کا نام ہے. تو مجنون کا قول اس کی اپنی ذات پر نافذ نہیں. جب اپنی ذات پر اس کا قول نافذ نہیں, اپنی ذات پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے, تو غیر پر بھی اس کا قول نافذ نہیں ہوگا, غیر پر بھی اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی, وہ گواہ نہیں بن سکتا. اسی طرح بچہ جو ہے, بچہ وہ بھی اگر اپنا نکاح کرے یا اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا, وہ بچپن میں بیوی کو طلاق دینا چاہے, تو اس کا قول نافذ نہیں ہوگا بھائی. نہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے, اور اگر اس کے والد نے اس کا نکاح کروا دیا ہے تو وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا. تو دیکھا, بچے کو بھی اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں. جب اپنی ذات پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے, تو غیر پر اس کو ولایت کیسے حاصل ہوگی؟ غیر کے معاملے میں یہ گواہ نہیں بن سکتا. تو لہذا ان کو جب اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں, تو غیر پر بطریق اولا ان کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. بعض علماء نے بڑا قیمتی اور پیارا ضابطہ ذکر فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے نکاح کی ولایت حاصل ہے, جو شخص اپنا نکاح کروا سکتا ہے, تو اس شخص کی موجودگی میں دوسرے کا نکاح بھی منعقد ہو جائے گا, اور جو شخص اپنا نکاح نہیں کر سکتا, اس کو اپنے نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہے, تو صرف ان کی موجودگی میں غیر کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. بھائی تو دیکھو, غلام اور اسی طرح مجنون اور اسی طرح بچہ, ان تینوں کو اپنے نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہے, یہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے. جب یہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے تو صرف ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.